نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اصلاح القلوب کے سلسلے میں صبر کا ٹاپک دیکھیں گے صبر کا لفظ ہم میں سے کسی کے لیے نیا نہیں ہے اس کے مختلف اینگل ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں صبر کے ساتھ ہی کسی کی موت یا بیماری یا دکھ آتا ہے حالانکہ اگر صبر کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آپ کو 15 جملے لکھواؤں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر زندگی ہے تو پہلا جملہ یہی لکھ لیجئے کہ صبر زندگی ہے صبر روشنی ہے حدیث میں آتا ہے صبر دیاؤن صبر وہ شخص سوار ہے جو کبھی لڑکھڑاتا نہیں اور صبر وہ ننگی تلوار ہے جو کبھی کند نہیں پڑتی ساری باتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بات یہی آئے گی کہ جو صبر کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا صبر اس لشکر کی مانند ہے جس کو کبھی شکست نہیں ہوئی صبر اس مضبوط قلعے کی طرح ہے جس پر حملہ کرنے والا اسے کبھی گرا نہیں سکا اور صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو لے کر کبھی راستہ نہیں بھٹکتی صبر اور مدد دو جڑواں بھائی ہیں یعنی وستعین بالصبر والصلاۃ جو صبر کرے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا چاہے وہ نان مسلمی کیوں نہ ہو صبر کا مقام جسم میں سر کے مقام کی طرح ہے یعنی جو اہمیت جسم میں سر کی ہے نا زندگی میں وہی حیثیت صبر کی ہے صبر دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کی کنجی ہے صبر اللہ کے راستے میں کلمہ حق کو بلند کرنے کی خاطر جانے دینے والوں کے لیے تحفہ ہے یعنی جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے نا تو آپ کو صبر تو کرنا ہی پڑے گا اس صبر کے بغیر بات نہیں بنتی دعوت اور تبلیغ سے منسلک لوگوں کے لیے یہ امید کی کرن ہے کہ لوگ مانے کہ نہ مانے وہ کام کرتے ہی رہیں یعنی نتائج سے اوپر اٹھ کر کام کرنا اسی طرح صبر عالم دین کے لیے زیادہ راہ ہے جو دین کا عالم ہے نا جو دوسروں کو دین کا علم دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو زیادہ راہ ہے وہ صبر ہے صبر کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا پھر صبر چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب کے لیے ضروری ہے یعنی اس کا عمر سے تعلق نہیں ہے اور صبر وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے رحمت کا سفر شروع ہوتا ہے اب جب اتنا کچھ ہے صبر تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کیا ہے اس کی کیا قسمیں فائدے کیا ہیں اور اس مقام تک کہاں تک کیسے پہنچیں اور پھر اس کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں صبر کی لغوی تعریف لغوی کیا ہے لغت سے ڈکشنری میں اور آپ اگر کوڈ ورڈ لکھ لیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ اس کے سارے رنگ سمجھ آ جائیں گے صبر کے لفظی معنی ہوتے ہیں قید کرنا کہتے ہیں نا حبس ہے حبس دوام بھی آپ نے نام سنا ہوگا ہمیشہ کی قید روکنا یہ معنی سورت کہف 28 میں آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں صبح بھی پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں پھر اسی طرح بنی اسرائیل کی بات کرتے ہوئے سورت بقرہ 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منو سلوا کا انکار کس لفظ میں کیا تھا بنی اسرائیل نے لن نصبر علی طعام واحد تو یہاں سے آپ کو صبر کی ڈائمینشن سمجھ آئیں گی کہ ہم سے ہر روز ایک ہی کھانا نہیں کھایا جا سکتا عرب لوگ کہتے ہیں قتل فلان صبرن اسے قتل کرنے کی غرض سے قید کر لیا گیا اب اسے اس وقت تک قید کی مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی جب تک کہ اس کو قتل کیا جائے صبر کیسے صبر یصبر صبرن یہ اس کی تصریف ہے اسی طرح سے زبان اور ادب کے اعتبار سے صبر جو ہے نا یہ جزا و فضا کی ضد ہے جزا و فضا کیا ہوتا ہے بے صبرا ہونا اور اس کے معنی ایک دوسرے سے فرق ہے عرب لوگ کیسے بولتے ہیں رجل صابرن یا صبارن یا صبیرن یا صبورن اسی طرح عربی زبان میں مؤنث کا صیغہ بھی صبور ہے یعنی صبورا نہیں آئے گا صبوری آتا ہے इसी तरह से जब ये कहा जाता है तस्बिरु, तो मुराद क्या है कि उसने मुशक्कत बर्दाश्त करके सब्र किया। यानी हर सब्र आसान नहीं होता, उसमें कई मुश्किलात होती हैं। मतलब यह है कि दिखावे की खातिर तकल्लुफ वाला सब्र किया। सब्र के 5 दर्जे हैं और हर दर्जे को पाकर आप इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। एक होता है बंदा साबिर, दूसरा है मुस्तबिर, तीसरा है मुतसब्बिर। आप कम अज़ कम बुक में अराब लगा लीजिए, क्योंकि जब आप बाद में ख़ुद पढ़ेंगे तो अराब ठीक नहीं होंगे तो प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। चौथा है सबूर और पांचवा है सब्बार। किसमें क्या फ़र्क है? साबिर तो आम लफ्ज़ है, फाइल का वजन है, आम तौर पे सब्र करने वाला। मुस्तबिर कहते हैं सब्र पे जमा रहने वाला, मुश्किलात से दो चार शख्स। इसी तरह मुतसब्बिर कहते हैं झूठा बनावटी सब्र करने वाला, यानी दिखावे की खातिर ऊपर ऊपर से साबित कराता है कि मैं सब्र कर रहा हूँ। सबूर कहते हैं सब्रे अजीम का मुजाहरा करने वाला, फाउल का वजन है, यानी जिसके सब्र की लोग फिर मिसाल दें। या जिस तरह आप कहते हैं ना कि सब्र की इंतहा हो जाए और उसका मद्दे मुकाबिल उसकी सकत नहीं रखता। इसी तरह सब्बार कहते हैं हद से ज्यादा सब्र व तहम्मुल से काम लेने वाला। सब्र की इस्तलाही तारीफ क्या है? नफ्स को रग़बत वाली चीज़ों से रोकना। ये लिखिए, हाथ से लिखें। हमारा नफ्स हमें क्लासरूम में भी मुश्किल में डालता है, चाहे किसी ज़रूरत के तहत ही डाले, लेकिन रग़बत वाली चीज़ें और महबूब चीज़ों से रोकने के लिए जो मुशक्क़त आती है ना, तकलीफ़ आती है, उसको बर्दाश्त करने को सब्र कहते हैं। इसी तरह हवाए नफ्स के चुंगल में फंस जाने से नफ्स को बचाना सब्र है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि नफ्स की पसंदीदा चीज़ों से रोकने में जो मुशक्क़त है वो सब्र है, और ख्वाहिशात से खुद को रोकने में जो मुशक्क़त है उसको सब्र कहते हैं। तीसरी तारीफ क्या है कि नफ्स को इस चीज़ की इंजामदही की तरफ गामजन करना जिसकी इंजामदही अल्लाह को मतलूब है, और उस अमल से रोकना जिससे अल्लाह ने मना किया। ठीक है, यानी अच्छे कामों पे करने पे जो तकलीफ़ होती है वो सब्र है, और बुरे कामों से रुकने पे जो तकलीफ़ है वो सब्र है। इसी तरह मुसीबत और इब्तला का मुकाबला करते हुए डटे रहने वाले शख्स को साबिर कहा जाता है, क्योंकि उसने खुद को शिकवे से रोका, जजा व फजा से रोका। इसी तरह रमज़ान को शहरुस सब्र कहते हैं, हदीस में आता है, क्योंकि इसमें सारे मुसलमान पूरा महीना खाने पीने शहवत वगैरह से रुकते हैं। अब सवाल पैदा होता है बाकी चीज़ों की तरह कि क्या सब्र एक साइलेंट चीज़ है, बस एक ही है? ये इसके स्टेप्स हैं। तो सब्र के मुख्तलिफ दर्जे हैं, जिस तरह शुक्र के हमने दर्जे पढ़े थे ना, क्योंकि हर बंदे पे तकलीफें जो पड़ती हैं ना वो मुख्तलिफ होती हैं। और दूसरी बात है, सेम तकलीफ दो लोगों पे पड़ेगी ना मुख्तलिफ पे, तो उनके हालात फर्क है। फर्क समझ आ रहा है? तकलीफ एक ही है, बैकग्राउंड फर्क था। मसलन शादी के बाद हर लड़की को घर का काम करना पड़ता है। एक वो थी जिसने माँ के घर में भी किया हुआ था, एक वो थी जिसने कभी नहीं किया हुआ। तकलीफ एक ही है, हालात फर्क है। ठीक है, तो लोगों के हालात और वाकयात की वजह से सब्र के दर्जे बदल जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें, यानी फ़राइज़ के करने में जो मुश्किल आती है उसका सब्र, और नाफरमानियों से रुकने का सब्र। सबसे मुश्किल सब्र ही है, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल का सब्र कह ले। जो काम करना है वो करना ही है, नमाज का सब्र, एक अल्लाह को मानने का सब्र, रोज़े का सब्र, हज का सब्र। फिर इसी तरह से गुनाहों से बचना। दोनों में से अहम कौन है? दोनों ही अहम है, लेकिन फ़राइज़ को करना अहम तर है, क्योंकि फ़राइज़ को अंजाम दिए बगैर गुनाहों से बचने में फ़ायदा नहीं है। तीसरा सब्र होता है जो मुसीबतों के आने पे हो, बीमारी, परेशानी, तकलीफ, ये उससे छोटा दर्जा है। वजह क्या है? जो मुसीबत आती है वो गैर इख्तियारी है, आपके इख्तियार में नहीं है कि आप बीमार हो कि ना हो, आपका बच्चा बीमार हो कि ना हो। अब जब गैर इख्तियारी चीज़ आती है तो बंदे के हाथ में नहीं होती, तो फिर उस पर तो बंदा मजबूरन ही सब्र कर लेता है। जबकि अल्लाह की फरमा बरदारी करना और अल्लाह की नाफरमानी से रुकना सरासर इख्तियार है, विल पावर है आपके पास, चॉइस है। तो लिहाजा पहले का दर्जा दूसरे से बड़ा है। ठीक है। इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं कि मैंने इब्ने तैमिया को ये कहते सुना, मैं कहती हूँ गोल्डन वर्ड्स में लिखने के काबिल ये कोटेशन है इनकी, हज़रत यूसुफ़ के बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अजीज़े मिस्र की बीवी की बात ना मानने पर जो सब्र कर चुके थे ना, ये सब्र भाइयों के कुएं में डालने से बड़ा था। सच है कि नहीं? भाइयों ने कुएं में डाला, कोड़ियों के दाम बिक गए, बाप से दूर, खानदान से दूर, आज़ादी गुलामी में बदल गई, लेकिन ये सब्र छोटा था उसकी निस्बत जो अजीज़े मिस्र के घर में उसकी बीवी की तरफ से था। वजह क्या है? गैर इख्तियारी सब्र जो होता है ना, तो बंदे के पास कोई और चारा ही नहीं है, कुएं में गिर जुगे या गिरा जु दिए गए, क्या करें, वहां पड़े रहेंगे ना। जबकि अजीज़े मिस्र की बीवी के साथ जो मामला आया, ये सब्र अल्लाह को पहचानने वालों के सिवा और कोई नहीं कर सकते, ये आरिफीन का सब्र है। क्योंकि जब इंसान गुनाह पर सब्र करता है ना, तो अल्लाह को ये दिखाता है कि मैं अपने ऊपर काबू पाकर तेरी नाफरमानी से बच सकता हूँ। और सबसे मुश्किल ये सब्र कब हो जाता है? जब सारे असबाब भी हों और वसाइल भी हों, मीन्स भी हों और सारे टूल्स भी मौजूद हों, और फिर तबीयत करने को चाहे भी। लिखिए ज़रा हज़रत यूसुफ़ के पास कितनी प्लीज थी अजीज़ मिस्र की बीवी की दावत को कबूल करने की। नंबर एक, चढ़ती जवानी यूसुफ की। दूसरी बात, गैर शादीशुदा, कोई नेमल बदल ही नहीं था बीवी का कि चलो किसी और से ख्वाहिश पूरी करते। तीसरी चीज़, अजनबियत, दियारे गैर में थे और वहाँ बंदे को किसी की शर्म नहीं होती, दोस्तों में ख़ानदान में बंदे को थोड़ी शर्म होती है। चौथी चीज़, गुलामी, गुलाम थे और गुलाम बेचारा क्या करे, गुलाम तो बेदाम होता है, और अमूमन गुलामों में झिझक नहीं होती आज़ाद लोगों की निस्बत। फिर अगली चीज़, हुस्नो जमाल उस औरत का, मनसब और ओहदे वाली बड़े घर की औरत थी। फिर अगली चीज़, आका थी, मालिकन थी। फिर अगली चीज़, कोई देखने वाला नहीं था, कोई गार्डमैन नहीं था, कोई निगरानी करने वाला नहीं था जिसका खटका हो। और हसीन औरत जब यूसुफ को पुकार रही है और खुद इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों से अपने आप को रोका। क्यों? क्योंकि यूसुफ साबिर थे। कितना मुश्किल हुआ होगा यूसुफ के लिए ये सब्र। और इसके ऑपोजिट कैद थी, और धमकियां दे रही हैं कि तू अगर मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी करेगा तो तू कैद में चला जाएगा। बड़े दिल गुर्दे की बात है। तो लिहाजा जिस शख्स ने इतनी कोशिशों से सब्र किया, फिर अल्लाह उसको क्यों ना अपने अर्श का साया नसीब करे। तो लिहाजा पता क्या चला कि इताअत और फरमाबरदारी में और नाफरमानी और हराम से जो बचने का सब्र है ना, ये तकलीफ़ों और बीमारियों और परेशानियों के सब्र से कई गुना ज़्यादा है। अब फिर अगला सवाल आता है कि सब्र का इस्लाम में क्या मुकाम है? फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफिल है, क्या है? तो पहली बात है कि ये सब्र जो है ना, इसके इतने मुख्तलिफ रंग है, पांच किस्में इसके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसकी अहमियत देखिए कि ये फ़र्ज़ क्यों है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया। सीगा अमर के साथ आता है सूरत आल इमरान आयत 200, या अय्युहल्लज़ीना मनुसबिरू वसाबिरू वराबितू। तो इस बिरू का लफ्ज़ फेले अमर है, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि लोगों सब्र करो। फिर सूरत बकरा 45, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, सब्र और नमाज से मदद मांगो। फिर इसी तरह से सब्र को उलुल अज़्मी कहा गया, सूरत मोहम्मद 35, फसबिर कमा सबर उलुल अज़्मी मिनर रसुल, यानी उलुल अज़्म रसूलों की तरह सब्र करो। फिर सूरत अनफाल आयत 15 में कहा, फला तुवल्लू हुमुल अदबार, ये सबर की वो किस्म है जो दुश्मन से मुकाबले के वक्त पेश आती है। सूरत आल इमरान 139, वला तहिनु वला तहजनु, ना सुस्ती करो ना गमगीन हो जाओ। क्या पता चला कि मैदान जंग से गुजर जाना, हट जाना बेसब्री है। तो गोया कि आप कहें कि सबर पांच किस्म की तकलीफें, जिसको आप कह सकते हैं एहकामाते तकलीफिया, पांच हैं। सबर इतात पे, मनहियात से रुकने पे, बीमारियों पे, मैदान जंग पे, दीन की नशरो इशात की तरवीज पे। तो गोया के फिर सबर आप कह लीजिए कभी वाजिब होता है, फ़र्ज़ भी होता है, फिर सबर मुस्तहब भी होता है, मकरूह भी होता है और हराम भी होता है। ये हम सब पढ़ेंगे आगे। सबर वाजिब भी है, मुस्तहब भी है, मकरूह भी है, मुबाह भी है और हराम भी है। पांचों के गिर्द सबर घूमता है। कभी ऐसा होता है कि इंसान सब्र करे या ना करे, तो इख्तियार होता है, इसको उलुल अज़्मी कहते हैं, समझिएगा। एक था ना इख्तियारी सब्र और एक गैर इख्तियारी सब्र, जो यूसुफ की मिसाल में देखा, कुएं में डाले गए, इख्तियार नहीं था, सब्र ही करना है। अजीज़े मिस्र ने कहा क्या करो कि मेरी बात मानो, तो इख्तियार था, ये दूसरा दर्जा है। अगला सब्र देखिए, जो उन औरतों के हाथों मारे गए, जब सारी औरतें ही आ गईं, तब यूसुफ के पास तो और भी खुली दावत थी। एक नाइट क्लब में जब इतनी औरतें एक मर्द को बुलाने लगे, तो यूसुफ ने क्या कहा, कैद मेरे लिए इन औरतों के चुंगल से बेहतर है, इसको उलुल अज़्मी कहते हैं। बात समझे, सब्र की जो पीक है ना जिरवा, उसको उलुल अज़्म कहते हैं होना, यानी ये फिर सब्र अज़्म में ढल जाता है जब चॉइस हो और बंदा ना करे। सूरत नहल आयत 126, वही नाकब तुम फाकिब मिस बि मिसली मा ओकिब तुम भी ही हाँ वाले इन सबर तुम लहुवा खैरुल साबिरीन, अगर तुम बदला ले लो तो इतना ही ले लो जितनी तकलीफ दी गई, बिला शिबा अगर तुम सबर करोगे तो यकीनन ये बेहतर है। बस वह क्या होता है कि मजलूम के पास इख्तियार होता है, जालिम से बदला ले ले, है ना इख्तियार, अल्लाह ने हक दिया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिसुइ इल्ला मन ज़ुलिम, ठीक है अब दिया, लेकिन वो क्या कहता है, नहीं मैंने क्या करना है, मैं अपने इंतकाम की आग को सब्र की ठंडक से ठंडा करूंगा, तो वो क्या करता है कि इंतकाम नहीं लेता, तो ये सब्र जो होता है ना, ये सबसे ऊपर चला जाता है। बात बात है, चॉइस होने के बावजूद एक इंसान जब सब्र कर लेता है तो अल्लाह ताला फिर उसको पसंदीदा कहते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि ये मुस्तहब है, ये सब्र जब चॉइस हो और आप सब्र कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बदला ले सकते हैं, इस सब्र को सब्रे वाजिब नहीं कहेंगे, ये मुस्तहब है, क्योंकि अगर ये सब्र फर्ज होता तो हर एक को फिर जालिम को माफ करना पड़ता। क्लियर हुई बात, यानी वही बात आ गई कि जितनी तकलीफ उतना अजर। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वाजिब पर सब्र करना वाजिब है, ये बड़ा आसान है, कोई वाजिब काम है ना, मसलन नमाज पढ़ना वाजिब है ना, आप नमाज पढ़ेंगे और इसमें जो मुश्किल होगी ना, तो ये वाजिब है, वाजिब हुक्म को पीछे डाल देंगे तो ये हराम है, नमाज छोड़ देंगे तो हराम हो जाएगा ना। फिर इसी तरह हराम हराम है ना, हराम से रुकते हुए नफ्स को पीछे डालना ये इंसान पे वाजिब है, यानी आप हराम काम से रुकते हैं तो सब्र है, हराम में पड़ जाते हैं तो ये बेसब्री है। आप कह लें कि मकरूह चीज़ से रुकना, जो इंसान के पास मकरूहात है, ये भी पसंदीदा है, लेकिन मकरूह के करने की खातिर अपने जी को मारना, ये भी मकरूह है, मुबाह की खातिर सब्र का मुजाहरा करना भी मुबाह। सारी बात का खुलासा पता क्या है कि सब्र मुख्तलिफ तरह से होते हैं, आइए जरा इसको एक एक करके देखते हैं। सब्र वाजिब की तीन मुमकिन किस्में, नंबर एक वाजिब सब्र क्या है, कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ से किसी भी ऐसे काम को करे जिसका उसने हुक्म दिया, ठीक है। फिर दूसरा सब्र वाजिब क्या है, कि तकलीफ आई बीमारी आई तो रुक जाए, जजा फजा ना करे, नाराज ना हो, मसलन फजर की नमाज पढ़ना, ये सब्र वाजिब है। इसी तरह दूसरी चीज नाफरमानी से रुकना, इस पे सब्र, मसल जिना से रुकना, ये कौन सा सब्र है, वाजिब है, नफ्स कंट्रोल और लाइक दिस। इसी तरह से दूसरी किस्म है सब्र मुस्तहब, रिकमेंडेड है, पसंदीदा, मसलन क़यामुल लैल, रात को आप उठे, फिर खड़े होकर आप पानी नहीं पी रहे, बैठ रहे, ये भी मुस्तहब है। तीसरे दर्जे पे सब्र कभी मकरूहात में शुमार होता है, मसलन इसको समझिएगा, सब्र मकरूह कैसे हो गया, हम तो इसकी बहुत तारीफें सुन रहे थे, तो वो कब होता है, अगर किसी बंदे ने मुस्तहब काम करने की खातिर सब्रो तहम्मुल की मुशक्कत बर्दाश्त की, सोचिए काम पसंदीदा था, सब्र किया, इस काम को इरादतन अंजाम ना दिया, यानी मुशक्कत सही और जानबूझ के उस काम को ना किया, इसी तरह मकरूह काम के करने पर सब्र करना मकरूह कहलाता है। समझ आई ये बात आपको, देखिए जब अल्लाह ताला ने कोई चीज़ फ़र्ज की है ना, तो उसे रुकना फ़र्ज सब्र है, जिस चीज़ को अल्लाह ने मुस्तहब किया है ना, उस काम से रुकना सब्र मुस्तहब है, और सेम यही चीज़ मकरूह और अगली चीज़ों पे भी है। सारी बहस से आप एक चीज़ ज़रूर समझिए कि सब्र के मुख्तलिफ महाज होते हैं, कभी शरण सबर करना हराम भी बन जाता है, वो कैसे होगा भाई? सबर करना हराम है? गलत काम करता देखे और आप सबर कर ले, बीवी को गलत काम करता देखा मैं सबर करूंगा, यानी अजीज मिसर का जो सबर था ना अपनी बीवी को देखने के बावजूद वो हराम सबर था, क्योंकि हदीस में आता है कि तीन लोग जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे जबकि वो बड़ी दूर से आ रही होगी, तो उसमें एक क्या है, दयूस, कि जो अपने घर वालों में यानी अपनी बीवी में गलत चीज देखे और उसको ना रोके। ठीक है, इसी तरह से कभी सबर करना शरीयत की रोशनी में मुबाह भी होता है, वो मुबाह पर सबर करना या उसके दिफा में नफ्स को मारना है। अब हम सबर की किस्में देखेंगे। महलो वकू कहते हैं कि सबर कहाँ जाके करें, जंग तो मैदाने जंग में जाके की जाती है, खाना किचन में पकाया जाता है, तो सबर कहाँ करेंगे? तो नंबर एक, सबर की एक चोट आपके जिस्म पे पड़ती है, पाँव का सबर, टांगों का, चलने का, खड़े होने का, कमर के दुखने का, और दूसरी सबर की चोट पड़ती है आपके नफ्स पे, अंदर के जज्बे, ईगो पे चोट पड़ी। कुरान सुन रहे हैं, हर बात सुन के लग रहा है हमारी बात है, तो ये नफ्स का सबर है ना। फिर इसी तरह सबर को एक और एंगल से देखें तो दो किस्में क्या बनी, इख्तियारी और इस्तरारी, जिस पे भी हमने बात भी की है। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि फिर सबर की चार मुख्तलिफ किस्में बनी। लिखिएगा जरा, बदन इख्तियार के साथ, मसलन दीन के रास्ते में या अल्लाह की रजा में मुशक्कत वाले काम करने और उस पर नफ्स को मारना, कोई भी काम देख ले, नमाज देख ले, उसका जिस्म पे जो असर आता है ना, अल्लाह के रास्ते में चल के गए, बैठे, बोले, लिखा, सुना, परेशानी हुई, यानी जब आपके पास चॉइस भी मौजूद थी फिर भी आप अल्लाह के रास्ते का काम करते रहे, ये बदनी इख्तियारी सब्र हुआ। दूसरा क्या है, बदनी इस्तरारी, मसे मार पड़ी, चोट पड़ी, तो पटाई के वक्त सब्र के सिवा आप क्या करेंगे? अब दर्द ख़त्म तो नहीं होगा ना, तो सब्र करना पड़ेगा। ये जिस्म पे चोट पड़ी है लेकिन आप मजबूर हैं, आपको वो दर्द सहना ही पड़ेगा। तीसरा जो है नफसी इख्तियारी, नफ्स पे चोट पड़ती है, मसलन आपका दिल चाहता है आप म्यूज़िक सुने, मौसीकी है, गिटार है, सरंगी है, आप कहते हैं मैंने नहीं सुनना, आपने इख्तियार को यूज़ किया ना कि नहीं सुना, तो जितनी आपको इरिटेशन हुई, आपको एडिक्टेड थे म्यूज़िक के, लेकिन आपने जो सब्र किया ना वो आपका नफसी इख्तियारी होगा। चौथा क्या है, नफसी इज़तरारी, मजबूर है करने के लिए, और वो क्या कि किसी का महबूब उससे दूर है, उससे प्यार करने वाला उससे दूर है या जुदाई है, तब उस पर तो सब्र ही करेंगे ना, यानी जिसकी चोट दिल पे पड़ती है। ये जो हमने आखिर में दो पढ़ी है ना, न बदनी इज़तरारी और नफसी, अगर आप देखें ना तो जो जानवर होते हैं ना उनको भी कई जगह सब्र करना पड़ता है। कैसे? आप उस पर वजन लाद दे, वो बेचारा क्या करेगा, मुश्किल में ना, उसको तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह से आप देखिए कि उनके पास इख्तियार नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने आपको उनकी डोर पकड़ा दी है, तो इंसान के साथ क्या मामला है, इख्तियार भी है और इस्तरार भी है, इसीलिए फिर अजर है। और ये याद रख लीजिए, अल्लाह की सुन्नत है, जहां चॉइस है वहीं अजर है। मसलन साल है कि मेरा दिल धड़कता है, तो दिल धड़कने में हमें ना गुनाह ना सवाब है, क्योंकि हमारा इख्तियार ही नहीं है, ऐसे ही है ना। लेकिन आप चलते हैं, दौड़ते हैं ताकि आप जल्दी से ट्रेन पकड़ लें और आप मस्जिद पहुंच जाएं, तो आपके वो एक एक कदम का अजर है, क्योंकि आप एक अपने इख्तियार से एक नेक काम के लिए निकले थे। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि सब्र करने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है, जब चोट पड़े, नया नया सब्र। हदीस आपने कई बार सुनी है, हजरत अनस से है कि एक औरत जो एक कब्र पर बैठी रो पीट रही थी, तो अल्लाह के नबी ने उसको जाके नसीहत की। अब चूंकि वो आपको पहचानी नहीं तो जरा सी रूड हुई, यानी कि आपको क्या पता जो तकलीफ मुझे पहुंची आपको पहुंची तो क्या होता। खैर, आपने उसको कुछ ना कहा क्योंकि ये वक्त जो था अच्छा नहीं था बात करने का। बाद में जब उस औरत को पता चला कि ये अल्लाह के नबी थे तो बहुत शर्मिंदा हुई, तो आपने क्या कहा कि सब्र तो गम से दो चार होते वक्त ही होता, अव्वल वक्त, अब अफसोस करने से क्या फायदा। तो लिहाजा इंसान को जब कोई तकलीफ हो, कोई बात करे, ये जो आप कहते हैं ना मैं भड़क उठी, शुक्र करे मैंने इससे कोई बड़ी गोली नहीं चला दी, शुक्र करे मेरा दिमाग ही नहीं फट गया फलां की बात सुन के, यही वक्त सब्र का होता है। बाद में अपोलोजाइज करें, कुछ करें, क्या फायदा, वो तो गुजर गया वक्त, आपने अपने अंदर का बम बारूद खोल के दिखा दिया लोगों को। आप नोट करके देखें, अगर सब्र कर लेना हम, तो कभी घरों में लड़ाइयाँ ना हो।
क्योंकि शौहर से लड़ने के बाद जो उसको एक कड़वा जवाब देने के बाद हम खुद ठंडे हो चुके होते हैं, इसी तरह बीवी की छोटी सी गलती पे भड़कने के बाद शौहर खुद रियलाइज कर लेते हैं कि चलो इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, मैं भड़क कैसे पड़ा। एक माँ ने अपनी बच्ची की भी बात की कि मेरी बच्ची जो है वो मेरी किसी बात पे बोल पड़ी तो मुझे बुरा लगा, मैं खामोश हो गई। बाद में थोड़ी देर बाद बच्ची ने फिर मैसेज किया कि आई एम सॉरी, मैं अपने गुस्से से मजबूर हूँ। तो अब बच्ची ने क्या किया उस वक़्त माँ की बात सुनकर? सब्र नहीं किया। तो जिस वक़्त हाथ में अंगारा पड़े उस वक्त ये कहने लगे, हाय मैं मर गई, हाय पकड़ो, ये कहें कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि नफ्स पर सब्र बहुत मुश्किल गुजरता है। जब मुसीबत का हमला होता है ना और मामला गर्म होता है, उस वक्त सब्र बड़ा अजीम शान है, और जी गुर्दे के अलावा ये सब्र कोई कर नहीं सकता। अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि वमा युलक्का इल्ला ज़ू हज़्ज़े नसीम, सूरह हामीम सजदा में आता है कि ये बात तो किसी को सिखाई नहीं गई सिवाय बड़े नसीब वालों के। क्या? इदफा बिल्लती ही अहसन, के बुराई का जवाब भलाई से दो। फिर याद रखिए, दोस्तों के साथ सब्र और होता है, मुखालिफों के साथ सब्र और तरह का होता है। तो हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम सब्र की वैल्यू पहचाने। यहाँ तो अब हम बाकी इन डेप्थ पढ़ रहे हैं ना, मैंने तफसीर के दौरान जो कुरान के डिफरेंट एंगल चेक किए ना, तो मुझे ऐसे फील होता है, और शायद कहीं ना कहीं आपको उसके इशारे भी मिलेंगे, कि सब्र जो है ना ये गिरगिट है। आपने कभी कैमोफ्लेज जानवर देखे? जिस तरह की चीज़ों के पास से जाते हैं ना वैसी रंग हो जाता है। एक वीडियो भी है जिसमें वो एक है कोई गुलहरी सी तो रंग बदलती है। सब्र कैमोफ्लेज है। आप देखिए कि माल के मामले में हो तो कनात है, अगर सब्र ना हो तो नमाज पढ़ी जा सकती है? नमाज में दिल क्या करता है? बोले, खाए, सोए, नहीं कर सकते। तो नमाज सब्र की बेहतरीन अलामत है, इसीलिए कहा वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात। फिर इसी तरह बताइए कि अल्लाह के रास्ते में अपने माल में से माल दिया जा सकता है अगर सब्र ना हो? रिश्तेदारों की दिल तोड़ने वाली बातों को सुन के उनसे सिला रहमी की जा सकती है अगर सब्र ना हो? दीन का काम किया जा सकता है अगर सब्र ना हो? इल्म का काम किया जा सकता है अगर सब्र ना हो? पूरे दीन को आप फैला के देखे, उस पर जो करने वाली चीज़ों में मोटिव है ना, वो सब्र है। ख्वाहिश परस्ती क्या है? बेसब्री है। हवा परस्ती क्या है? बेसब्री है। दुनिया परस्ती क्या है? बेसब्री है। हुब्बे जाह क्या है? कि मुझे ऑनर मिले, इज्जत मिले, ओहदा मिले, बेसब्री है। हुब्बे माल क्या है? बेसब्री है। इन सब से हट के सब्र क्या है? हम देखेंगे कि सब्र की क्या अहमियत है। तो पहली बात क्या है कि अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी पर सब्र बड़ी काबिले कदर चीज़ है। सूरत मरियम आयत 65 में अल्लाह ताला कहते हैं, फाबुदहू वस्तबिर लि इबादती, बस उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर खूब जम जाओ। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने तारीफ की है उस बंदे की जो उसकी इबादत पे जम जाता है। अब देखिए, यह लफ्ज़ इस्तबिर है ना, सबरा से भड़के लफ्ज़ है ये, तो ये भड़ जाती है ना तो मानी बदल जाता है। इसबिर से ज़्यादा इस्तबिर में अहम है, मतलब क्या? किसी के मुकाबले पे सब्र करो। और ख़ास तौर पर सूरह तौहा में हज़रत गालिबन इस्माईल की बात है कि वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और इस पर खूब पाबंद रहो। आप खुद अपने ऊपर लेकर सोचिए, मैं एक जुमला बोलूँगी, आप उसकी तस्दीक कर दें या तकजीब कर दें। खुद नमाज पढ़ना आसान है, घर वालों को नमाज का हुक्म देना मुश्किल है। ये है वस्तबिर अलैहा। जब आप बच्चों को, शौहर को, और ख़ास तौर पे फजर की नमाज पे उठाते हैं तो लड़ाई तो उधर से शुरू हो जाती है। तो ये सब्र इस्तबर है, जब बंदा जम जाता है। अब जब इताअत और बंदगी के कामों में आप सब्र करते हैं ना, तो इसके तीन डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अच्छे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला मरहला क्या होता है? नीयत को दुरुस्त करना। आप में यहाँ आके रोज़ बैठ जाते हैं, नीयत चेक करने की ज़रूरत है। नीयत को ठीक रखना भी सब्र है। रियाकारी को दबाना और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करना, ये सब्र का पहला स्टेप्स है। तो हम चेक कर लेते हैं दोबारा, हम क्यों बैठे हुए हैं? अगर अल्हम्दुलिल्लाह नीयत अच्छी है तो पहले दर्जे का सब्र आप कर चुके। दूसरा सब्र क्या होता है? काम करने के दौरान का सब्र, यानी आप इताअत और बंदगी कर रहे थे, जैसे आप कहें कि कश्ती बिल्कुल मौजों के बीच में, अब उस वक्त मसा इसी पढ़ने की मिसाल लेते हैं, आप बैठे में
कमर थक सकती है, नींद आ सकती है, लिखते लिखते हाथ की रगें फूलने लगती हैं, पसीना आने लगता है, सुस्ती आ सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, फोकस नहीं है, गम ये लगा हुआ है कि मैसेज करना है, कोई पढ़ना है, कोई आना जाए लेने, छोड़ना जाए, आज शाम किधर है, वो क्या है, तो उस काम के करने के बीच का सबर, ये मुसलसल सबर होता है। अगर आप 3 घंटे की क्लास में बैठे हैं तो 3 घंटे आप सबर करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह नियत अला सबर आप शुरू में करके फारिग, चलें गुड, आराम से चेक तो करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है गाड़ी के अंदर जो क्लच है, और इसी तरह गाड़ी के अंदर गियर भी होता है, ब्रेक भी होती है। आप अगर सोचे तो बस काम ऐसे होते, बस पहली दफा करते, मसलन चाबी लगाते हैं, आप उसको लिख ले नियत, गाड़ी में जो चाबी लगती है ना, ये नियत है, ठीक जगह लगाएंगे तो गाड़ी चलेगी। और अब आपको कहते हैं कि आपकी जो गाड़ियों में चाबी नहीं लगानी पड़ती, बताए आपको ये बात, बस आपके पास चाबी मौजूद है, पर्स में या घर में गाड़ी चल पड़ती है, और गाड़ी वाला पर्स लेके चला जाए तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी बीच में, और ऐसा हुआ। तो जब इस तरह की मसले आते हैं, जब जिसमें सहूलतें ज्यादा है तो उसमें खराबियां भी ज्यादा आएंगी बाद में। बहरहाल चाबी लगाना कोई मुश्किल है, बस सही जगह पे लगाएं, गाड़ी चल पड़ी। उसके बाद दूसरा क्या होता है, गाड़ी में बैठे, आम गाड़ियों में देखिए आपको क्लच और गियर दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है ना, दोनों की कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, ये नहीं कि गियर छोटा वो बड़ा, चिड़चिड़ होगी या बहुत तेज जाएगी या गाड़ी बंद होगी। ये है आपका काम करने के दरमियान का सबर। नमाज के दौरान अपनी तवज्जो को मरकूज रखना, आप 2 नफिल इस नियत से पढ़ें कि एक बार भी मेरी तवज्जो ना भटके, मैं कह सकती हूँ कि आप पसीने पसीने हो जाएंगे, सलाम फेरने का फिर लगेगा कि फिर कहीं ना कहीं भटकी जरूरत थी, आजमा लें, माहौल अच्छा कर लें, डिस्ट्रेक्शन छोड़ दें, कपड़े अच्छे पहन लें, खुशबू लगा लें, कोई दुनिया की चीज़ आपके पास ना हो, और आप कहते हैं अल्लाह अकबर, बस वो जो बीच में शैतान ने उसके वाके जो बस उसे डाल देना, ये है बीच का सबर। तीसरी चीज, बंदगी और इबादत से फरागत के बाद का मरहला, ये बड़ी एहतियात की चीज़ है। आखिर में काम करने के बाद अब क्या करना है, दिखाओ लोगों को, एक और कोर्स कर लिया, मैं एक और नेकी करने लग गई, यानी इसमें फिर रियाकारी आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इबादत को और नेकियों को रियाकारी से बचाना, ये तीसरे दर्जे का सबर होता है। सूरत बकरा 264 में अल्लाह ताला कहते हैं ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा। फिर इसी तरह सूरत मोहम्मद 32 में आता है वला तुबतिलू आमालकुम, अपने आमाल को जाया ना करें। तो ये कौन सा था जी, तात के कामों का सबर। दूसरे दर्जे पे है नाफरमानी से रुकने का सबर, इसको भी देख लेते हैं, पहले की तरह ही है, वहां किसी काम के करने में तकलीफ हो रही थी तो इधर किसी काम से रुकने में तकलीफ, सारे वही स्टेप हैं, जो तीनों उधर थे वही तीनों इधर हैं। मसलन नियत उधर कैसे थी, आप शराब नहीं पी रहे, नियत क्या है, गुनाह समझ के छोड़ा है या लंग्स कैंसर के डर से छोड़ा है। हर शराब छोड़ने वाला तायब नहीं होता, नियत देखी जाएगी, फिर वो जो उसका नशा टूटेगा, इरिटेशन होगी, सर में दर्द है, ये वो बीच का सबर है। तीसरी बात है, अब शराब छोड़ दिया, अब उसके बाद अपनी इस बात को किस किस रंग में दुनिया लोगों के सामने लाता है, ये तीसरा सबर है। लेकिन ये याद रखिए कि नाफरमानियों से रुकने का सबर इतात के कामों के करने से बहुत मुश्किल है। एक दफा क्लास में एक बात हुई थी तो हमारी एक सिस्टर आती थी, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने कहा कि मैं तो घर जाके बस इसी एक जुमले पे गौर करती रही, 10 नेकियां करना आसान है एक गुना छोड़ने से। ये सबीलुल जन्ना में कहीं बात हुई थी कि ये कितनी सच्ची बात है। हम तो हज्जुद की नमाज भी पढ़ लेंगे, सलातुल तस्बीह भी पढ़ लेंगे, 4 के नफिल भी पढ़ लेंगे, लेकिन गीबत छोड़नी पड़े तो मुश्किल होती है, पसीने पसीने हो जाता है बंदा अपने गुनाहों को छोड़ने में जो सब्र करता है उस पर। तीसरी किस्म का सबर, मुसीबतों पे सबर। इमाम मुजाहिद कहते हैं सब्र जमील तो वो नेमत है जिसमें जज़ा फ़ज़ा की गुंजाइश ही नहीं है। और सूरत यूसुफ पढ़ते हुए आपने सुनी हुई है सब्र जमील की तारीफ, असब्रु ला शिकवता फीहा। सब्र जमील यानी खूबसूरत सबर क्या है, ब्यूटीफुल पेशेंस क्या है, वो सबर जिसमें शिकवा ना हो। एक काम भी करते जा रहे हैं दीन के, शिकवे भी करते जा रहे हैं, गिले भी एतराज भी है, लेकिन मुसीबतों पे जो सबर होता है ना उसमें ज्यादा जुबान का दखल होता है, ये भी लिख ले, जुबान बहुत बोलती है, शिकवा हो, नौखा हो, मातम हो, जजा फजा हो, ये सब जुबान से ही होता है। थप्पड़ मारना मुंह पे, गालों को पीटना, गिरेबान चाक करना, कपड़े नोचना, कपड़े फेंक देना, सर पटकना, शोर मचाना, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है बेसब्री में। इसलिए ऐसा बंदा जब ये कुछ करता है ना, तो वो अपने अंदर की बीमारियां खोल देता है। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए। सुफियान सॉरी कहते हैं, तीन चीज़ों को सब्र में शुमार किया जाता है। अब आप लिखें जरा, इन तीन के अलावा तो नहीं कुछ करती। पहली ये कि किसी के सामने अपनी तकलीफ की शिकायत ना करना। एक होता है बताना, डॉक्टर के पास गए, आप उसको बता रहे हैं यहाँ दर्द है, पेट में दर्द है, सर में होता है, ये होता है, ये कोई शिकवा थोड़ी है, ये तो आप अपनी हालत बता रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला ऐसे नहीं पकड़ के आपको गुनाहगार करते हैं। फिर दूसरी चीज़ है अपनी मुसीबत का किसी के सामने गिला शिकवा ना करना। पहले क्या था शिकायत, अब क्या है गिला शिकवा। और तीसरा, खुद अपने मियाँ मिट्ठू बनकर अपनी जात का तज़किया ना करना, ऐन सबर है। यानी अपनी तारीफें ना करते जाओ कि मैंने इतना सबर किया, मैं तो इतने सबर वाली हूँ, मेरे से तो बड़ा कोई सबर वाला ही नहीं है। तो क्या पता चला कि अल्लाह के फैसलों को कबूल कीजिए। हर बंदा इस काबिल होता है कि आपसे दिल की बात कर सके। चलिए आप अपने ऊपर लें, ऐसे ही जरा लाइट मूड में आपको करने के लिए पूछती हूँ। आप अपने दुख सुख कितने लोगों से कर सकते हैं? ऐसे ही नंबर सोचे, होता है ना, कोई दोस्त है, कोई दबरानी है, कोई बहन है, कोई चचा की बेटी, हर एक के कुछ होते हैं। हर एक बोल दे अपना कि जिनसे आप अपने दिल की हर बात कर लेती हैं। जी ऐसे लग रहा है पता नहीं किस सितारे से उतरी हुई मखलूक है।
बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा शेयर करते हैं,
बेस्ट फ्रेंड से करते हैं
जिस
जी।
पर एतमाद हो, पता हो कि वो, या फिर वो सही मशवरा दे कि इसका अल्टरनेटिव ये है, या अगर आप इस मसाइल का शिकार हैं तो ऐसे करें, ऐसे नहीं, वो अच्छी राय दे।
सही जी, किसी से नहीं कर सकती जी। मियाँ भी किसी में ही आते हैं। बाज़ औरतों ने मियाँ के साथ बातों को तो समझा ही नहीं हुआ कि ये कोई गीबत शीबत भी होती है दोस्त और भाई से जी। इधर से आप किससे करती हैं? सिस्टर से आप? मियाँ से,
बेटी
बेचारे मजलूम जी।
से अपनी
बेटी से? अम्मी से।
अपनी
देखिए यही बस मैं सुनना चाह रही थी, कोई माँ से, बहन से, बेटी से, दोस्त से। आप सच सबके नाम लिख के बताएं, वो आपका दुख सुन तो सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो क्यों वक्त ज़ाया करते हैं? अपने आप को उस मुकाम पे लेकर आए कि आप कहें मैं अल्लाह के सिवा किसी से अपनी को बात नहीं करती, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। ये है मुकाम मार्फत। माँ से करेंगे दुखी होगी, बहन से करेंगे हो सकता है गलत मशवरा दे दे, भाई से करेंगे गैरत में आके हो सकता है ऐसा कोई काम कर दे आप बाद में पछताएं इसको क्यों बताया, मियाँ से करेंगे हो सकता है जाके ससुराल वालों से लड़े फिर आप ही की बेइज्जती हो कि मियाँ को बताती हैं बातें। किसी से ना करें, मुमकिन है आप मुजाहिदा करेंगे जी। आप इसकी प्रैक्टिस किया करें। मसलन मैं किसके पास बैठती हूँ तो मैं दिल की बातें खोल देती हूँ, सोचे अपनी दोस्त है बहन, बस जब उसके पास कभी बैठना या मिलने ना, तो पहले से खुद को जमा के जाएं कि मैं बात नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। ये प्रैक्टिस है ना, क्योंकि इसके बगैर हम सीख नहीं सकते। अब से बैक ट्रैक करें माइंड को, अगस्त था, फिर उससे पीछे जुलाई था, फिर जनवरी, पीछे जाती जाए, फिर साल पूरा, कब आखिरी बार मैंने किसी से अपने दिल की बात की थी? किसी को इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, आज ही की होगी। आप देखिए कि जब आप ये यकीन से कह दें मैं कसम खा सकती हूँ मैंने इन पिछले 6 माह में कभी किसी से अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं शेयर की कि जो मेरी ज़ात की धज्जियाँ खोल दे, तो ये है अल्लाह पे नज़र लगाना। और अगर सेलफोन ने मुसीबत ही डाल दी है, बेटी ससुराल में रहते हुए भी उसका ध्यान माँ में ही अटका हुआ है, अम्मी अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब्बा या मियाँ ने ये कह दिया, अब क्या करें, अब सास ने कहा, वो उल्टे सीधे मशवरों से और ही मामले बिगड़ते हैं। अपने अंदर रखें। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैं इस पूरे पिछले 10-15 साल में जिधर भी गई, जहाँ भी रही, एक ऐसी सिस्टर है, हालांकि वो मेरी स्टूडेंट थी लेकिन वो माशाल्लाह दीन के साथ ही आगे बढ़े, वो ऐसी हैं कि जिनके पास मैं कभी बड़े रिलैक्स मूड में बैठी हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं आज अपने दिल की कोई बात कराऊंगी। और अल्लाह की कसम खाती हूँ 15 साल हो गए आज भी नहीं की।
और मैं उसको कहती हूँ कि तुम वो वाहिद हो कि जिसके सामने बैठ के मेरा दिल करता है मैं कुछ बातें करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा बच गया। आगे तुम सुनाओ, वो उतने में वक्त पूरे, किसी से आप कह तो दें आप सुनाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। तो आप कोड वर्ड्स रखें, सुनाने से पहले सुनना, आप सुनाएं। यानी जैसे आप जितने लोग हैं पिछले 5-6 साल में मेरे साथ ही हैं माशाल्लाह, किसी से दुख सुख किए अल्हम्दुलिल्लाह है भी कोई नहीं, लेकिन दिल ही नहीं करता। मेरी माँ को हमेशा मेरे से ये गिला होता, मेरे से नहीं बात करती, औरों से करती होगी, औरों से भी नहीं करती, दिल ही नहीं करता। मियाँ से क्या करूँ, वो बेचारे क्या करेंगे। या आपके स्कूल के इश्यूज होते हैं ना, यकीन करें सिर्फ सर के सामने वही बात डिस्कस करती हूँ जिसमें मुझे उनसे मशवरा चाहिए होता है। या आपके जाती फेल अमल छोटे मोटे सारी दुनिया में चले रहते हैं, कभी नहीं की, करती तो यहाँ ना बैठी होती, ये आपको बता दूँ। हमेशा अपनी बातों को अपने अंदर रखें, फिर आपके घर वाले भी आपकी दीन की भी कदर करेंगे। आज यहाँ कुछ हुआ घर जाके शेयर करें, कल मियाँ ने कहने कोई ज़रूरत नहीं जाने की, वहाँ तो औरतें ये करती हैं। हम बहुत बोल के ना, बहुत बोल के अपना रोब ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज़र्फ चाहिए। और ये कब होता है, जब ऊपर कर ली बातें, लोगों की औकात नज़र आ जाएगी ना, जिस दिन हमें ये बड़े छोटे हैं बेचारे, फिर आप नहीं करेंगे, क्यों करूँ, ज़रूरत क्या है इसे करने की। वो बात करें जिससे खुशी हो, कि जिसे लगे ये तो बड़े खुशकिस्मत हैं, इनको तो कोई दुख ही नहीं, ये तो कभी बीमार नहीं होते, ये तो कभी परेशान नहीं, फिर आपकी इज्जत बनेगी। और जब आप किसी से भी छोटी सी अपनी कोई बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा तो आप उसकी नज़रों में इतना तो नीचे हो ही जाते हैं, लोग ज़्यादा देर नहीं सुन सकते आपकी बातें। तो जब आप अल्लाह ताला से बात करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको बेनियाज भी कर देता है। जब मांगना उससे है तो उसी से मिल जाना है। तो लिहाजा ये सारी बात जो अभी तक हुई, इसका खुलासा क्या है, दिल का हाल अल्लाह से बयान कर। किसी को इजाज़त ना हो आपके दिल के अंदर झांकने की, ये कुछ शरेआम नहीं है। नो ट्रेसपासिंग प्लीज। जी क्या हुआ, जो आया उससे बैठे दुख करके, इधर बीमारी इधर दर्द, भाई डॉक्टर को बताइए, गरीब को कोई आपको दवा दे दे। आप देखिए हमारी बूढ़ी खवातीन जो होती हैं हमारे कल्चर में, जहाँ बैठती हैं उनका हाल ही पूछेंगे ना, तो 5 मिनट तो वही बोलती हैं कि दसा, वो समझती आप डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर की दुकान पर आई हैं। इधर दर्द है, उधर है, फिर रॉड डलवाया था, फिर वो निकाला, फिर वो चुभने लग गया था, अब ये किया, अब बड़ी दवाइयाँ ला के दी हैं, तो बस वैसे तुसी दुआ करो अल्लाह से दे। होता कि नहीं होता ऐसा, किसी से पूछ ले। अमूमन हम जो सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं ना अपना दुख, वो बीमारियों का करते हैं, और भी करते हैं, लेकिन बीमारियों का तो खुलेआम करते, सर्टिफिकेट है, कमेंट नहीं करता क्योंकि पर्सनल नहीं होता, मत किया करें। आपको था कि एक शख्स था, तो वो कहीं से गुजरता, ये भी किसी आज की बात में पुरानी मैंने कहीं बयान किया हुआ, एक शख्स जब कभी बस में बैठता था तो हमेशा एक शख्स को वहाँ खड़ा देखता था, जिसके बाल बड़े भूरे थे, आंखें गोल्डन थी, रंग सफ़ेद था, तो ये उसको देख के क्या कहता था, अल्लाह तूने मुझे इसकी तरह क्यों नहीं बनाया। और इतने में इसकी बस आती थी ना, ये चला जाता था, तो ये एक किस्म का कुड़ता था उसको देख के, कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं, उसकी ये नहीं वो नहीं, पर हर वक्त इसके लाशर में ये था, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। एक दिन क्या हुआ, इत्तफाकन जिस बस में ये बैठा स्टॉप से, वो भी उसी में बैठ गया। खैर इसने उसको देखकर तो ऑफर की कि आ जाओ मेरे साथ अली सीट पे बैठ जाओ। तो आपको तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा। कहा क्यों, और गौर किया तो क्या पता चला, कहता मैं बैठ ही नहीं सकता, मेरी कमर नहीं मुड़ सकती, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। और आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे कहीं इधर भी आएगा, हमारे असलाफ में कुछ ऐसे थे उनको एक आंख से नहीं दिखता था, सारी जिंदगी किसी को पता नहीं चला कि उनको एक आंख से नहीं दिखता, छुपाते थे, कहते थे अल्लाह का शिकवा करो। तो सब्र के बड़े दर्जे हैं, आप मैं अगर सब्र कर जाएंगे ना, अल्लाह हमसे बहुत बड़े काम लेगा। छोटा सब्र छोटे काम, बड़ा सब्र बड़े काम। इस सीने को इतना खोले, आओ डालो, शाबाश, ये ट्रैश कैन है बड़ा सा जो नीचे नहीं रखा था, आप भी अपने कचरे को ट्रैश कर दें, आप भी अपना वो सप्पर का थैला लाएं डाल दें, आप सब की सुने, सब की सुने, अपनी ना सुना। आप देखिएगा आप कारामद बनते जाएंगे, दिन ब दिन अल्लाह ताला आपसे खैर भी लेगा और आपको खैर के रास्ते पे माइल भी करेगा। तो ये बस अपने लिए मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हकीकत में अपना बना ले।